एक पृष्ठ 21, मानव अधिकार, स्त्री विमर्श और साहित्य, मृदुला गर्ग। मैं अपने आलेख में स्त्री विमर्श का मानव अधिकारों से सीधे संबंध और साहित्य की उन्हें पाने में निभाई जाने वाली प्रेरक भूमिका पर बात करूंगी। पश्चिम में स्त्री विमर्श नारीवादी आंदोलन के भीतर से उभर कर आया था, कहें कि आना पड़ा था, और उसका सीधा संबंध मानव अधिकारों की मांग से था। उसी रूप में उसने हमारे देश में प्रवेश किया है। पहले पहल जब स्त्रियों ने अपने मानव अधिकारों की मांग की, और जिस अधिकार की मांग सबसे पहले की थी वह वोट डालने का, यानी लोकतंत्र का, नागरिक होने का अधिकार था। आज़ाद भारत में हमें यह अधिकार बिना आंदोलन किए मिल गया, पर उसके पीछे पश्चिम के आंदोलन की लंबी पृष्ठभूमि थी। उस समय कहा गया कि अनेक ऐसे काम हैं जो पुरुष कर सकते हैं पर स्त्रियां नहीं, मसलन गणित या विज्ञान से संबंधित काम, राजकाज या कानूनी काम, डॉक्टरी पेशे में सर्जन का काम, ट्रक चलाने से लेकर हवाई जहाज उड़ाने का काम वगैरह। इसलिए स्त्रियों को राजनीति वगैरह में पढ़ने की बजाय घर बार चलाने और बच्चों के पालन पोषण तक सीमित रहना चाहिए। तभी स्त्री विमर्श की उत्पत्ति हुई। व्यापक अनुसंधान के बाद स्त्री विमर्श ने सिद्ध किया कि प्रकृति से स्त्री किसी दृष्टि में पुरुष से कमतर नहीं थी, भिन्न जरूर थी, पर सिर्फ एक अर्थ में कि केवल स्त्री ही माँ बन सकती थी। पर यह भिन्नता उसकी कार्य दक्षता को कम नहीं करती थी, उस पर मातृत्व का अतिरिक्त भार जरूर डालती थी। उसका सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता था। मातृत्व स्त्री को वह शक्ति देता है कि वह बिना बाहरी मदद या साधन के सिर्फ अपने बलबूते पर एक प्राणी को पहले 9 महीने गर्भ में रखकर और अगले 6-7 महीने स्तनपान करवाकर जीवित रख सकती है। यह शक्ति उसे अपार जीवषा और कल्याणकारी ऊर्जा देती है। इसीलिए परिपक्व होने पर स्त्री विमर्श ने मातृत्व को नकारने के बजाय उसे नया व्यापक अर्थ दिया। बच्चे को जन्म देने और उसका पोषण करने से आगे जाकर उसे उस पोषक तत्व की तरह स्थापित किया जो सिर्फ बच्चे का नहीं, किसी भी जरूरतमंद प्राणी, संस्था, पर्यावरण व परिवेश का पोषक हो सकता था। उसके साथ यह भी सच है कि मातृत्व स्त्री पर अंकुश लगाता है, उसे मोह या प्रेम के बंधन में बांधे रखता है। जहाँ तक साहित्य का सवाल है, उसने इस प्रकरण में अहम भूमिका निभाई है। उसने मातृत्व के व्यापक रूप को प्रामाणिक अभिव्यक्त दी है और स्त्री के सबल सक्षम पक्ष को दर्शाया है। पृष्ठ 22। हिंदी साहित्य में मातृत्व के व्यापक रूप का चित्रण सभी महिला कला कथाकारों ने किया है, चाहे वे मन्नू भंडारी, आपका बंटी, मंजुल भगत, नालायक बहू, राजी सेठ, मार्था के देश में व गणित ज्ञान, सुधा अरोड़ा, महानगर की मैथिली, ममता कालिया, चंद्रकांता, चित्रा मुद्गल जैसी वरिष्ठ लेखिकाएं हों, या 80 के दशक के बाद की अलका सरावगी, गीतांजलि श्री, सारा राय जैसी लेखिकाएं, या नीलाक्षी सिंह, महुआ माझी, अल्पना मिश्र जैसी नई लेखिकाएं। नविता सिंह के उपन्यास अपनी सलीबे में शिक्षा संस्थान और सामाजिक संस्था का पोषण करने वाली स्त्री का चित्रण हुआ है। क्षमा शर्मा के उपन्यास शस्य का पता में पर्यावरण के पोषण का। मातृत्व शक्ति का स्रोत हो सकता है तो शोषण का माध्यम भी बन सकता है। उदाहरण के लिए मैंने अपने उपन्यास कठगुलाब में उसके सकारात्मक पक्ष को मानवीय संवेदना के सशक्तिकरण के आधार के रूप में उठाया है, तो चित्रा मुद्गल ने आवा में उसका एक नकारात्मक शोषक पक्ष लिया है। स्त्री को किराए की कोख के रूप में प्रयुक्त किए जाने की साजिश को चित्रित किया है जो आज एक प्रवृत्ति बनकर उभर रही है। इसमें मानव अधिकार का जो हनन निहित है वह आज व्यापक बहस का मुद्दा बना हुआ है। गीतांजलि श्री ने माई में उसके पोषक और खाली जगह में उसके शोषक बिंदु पर कलम चलाई है। 1970 में मंजुल भगत की नागपाश और नालायक बहू कहानियों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को परखने का जो सिलसिला शुरू हुआ था आज तक चला आ रहा है। दुर्भाग्य से स्त्री के कमतर होने की धारणा अभी तक चली आ रही है। उसे निरस्त करने में पढ़ी लिखी महिलाएं अगर कुछ हद तक सफल हुई हैं तो वह स्त्री विमर्श और साहित्य के कारण ही है। पर ऐसा नहीं है कि स्त्री के मानव अधिकारों पर केवल स्त्रियों ने लिखा है, पुरुषों ने भी काफी लिखा है। कह सकते हैं कि मानव अधिकार केंद्रित स्त्री विमर्श के विकास में स्त्री पुरुषों का साझा योगदान है। मानवाधिकारों की रक्षा को स्त्री विमर्श का अहम अंग बनाने में साहित्य ने दो दिशाओं में सार्थक काम किया है। पहला, साहित्यकारों ने उन कार्य क्षेत्रों में काम करने वाली स्त्रियों का चित्रण करके जिन्हें अरसे से स्त्रियों के अनुपयुक्त माना जाता रहा था, जीवंत और प्रामाणिक रूप से दिखलाया कि वह धारणा निर्मूल है। स्त्री को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने में इसका बड़ा योगदान रहा है। उदाहरण के लिए मैं कुछ उपन्यासों के नाम दे रही हूँ, वे उदाहरण मात्र हैं, और भी बहुत से ऐसे उपन्यास हैं। नौकरशाही में स्त्री को देखना चाहें तो नासिरा शर्मा का उपन्यास शाल्मली है। मजदूर संगठन में चित्रा मुदगल का उपन्यास आमा है। राजनीति में कमलेश्वर का उपन्यास काली आधी। क्रांतिकारी इतिहासकार और शस्त्र चिकित्सक के रूप में मेरे उपन्यास अनित्य में स्त्रियां आई हैं। व्यवसायी और व्यापारी के रूप में प्रभा खेतान के उपन्यास पीली आधी में है। दूसरा काम साहित्य ने यह किया है कि युद्ध, दंगा, फसाद और विस्थापन की स्थितियों में पुरुष की तुलना में स्त्री पर जो अधिक और विशेष तरह का अत्याचार होता है उसकी विवेचना की है। इसका प्रमाण मंटू से लेकर द्रोणवीर कोहली तक के विभाजन पर लिखे कथा साहित्य में देखा जा सकता है। इसके अलावा भी देश में होने वाले दंगों पर अनगिनत कहानियां हैं। एक तरह से आजकल सांप्रदायिकता लेखकों लेखिकाओं का प्रिय विषय बन चुका है। असगर वजाहत हो, स्वयं प्रकाश हो, क्षमा कौल हो, सारा राय हो या प्रभुनाथ सिंह आजमी, नई लेखिकाओं में दंगों पर लिखा गीतांजलि श्री का उपन्यास हमारा शहर उस बरस काफी चर्चित रहा है। जम्मू कश्मीर से विस्थापन पर चंद्रकांता का बृहद उपन्यास कथा सतीश विशेष उल्लेखनीय है। इस प्रकार के हादसों से होने वाले विस्थापन के अलावा मैं अपने देश में हर दिन होने वाले त्रासद और विप्लवकारी विस्थापन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। इस विस्थापन की प्रक्रिया आज़ादी के बाद से निरंतर चली आई है। आर्थिक कारणों से जनसाधारण को गांव से निष्कासित होकर शहरों की तरफ पलायन करना पड़ता है और वहाँ बिना नियमित रोजगार यानी बिना न्यूनतम आर्थिक संबल हाशिए पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ज़्यादातर ऐसे प्रवासी मजदूरों के पास न राशन कार्ड होता है न वोट, यानी एक तरह से उन्हें न्यूनतम नागरिक अधिकार भी प्राप्त नहीं हो पाते। उससे उत्पन्न शोषण का क्रूरतम और बीभत्स रूप हाल में दिल्ली के उपनगर निठारी गांव में देखने में आया था। कई महीनों तक वहाँ नाबालिग बच्चियों का अपहरण होता रहा, बलात्कार हुआ, फिर नृशंस हत्या, पर पुलिस ने सुराग पाने की कोशिश तक नहीं की। इनमें ज़्यादातर कम उम्र लड़कियाँ थीं, पर कुछ छोटे लड़के भी शामिल थे। यह बच्चे उन्हीं विस्थापित मजदूरों के थे जिनके पास अपनी नागरिकता सिद्ध करने तक के प्रमाण मौजूद नहीं थे। पुलिस ही नहीं, उसी उपनगर में रहने वाले उच्च जात के परिवारों का कहना था कि उनका उस घटना से कोई सरोकार नहीं था। दिल्ली शहर के मध्यवर्गीय निवासियों का कहना था कि इतने बच्चे पैदा करेंगे तो और क्या होगा। कुल मिलाकर एक निर्मम उदासीनता का वातावरण बना रहा था। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी पुलिस के FIR दर्ज न करने के खिलाफ जो नागरिक अपील दायर की गई थी उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। जहाँ तक साहित्य का सवाल है, हमारे साहित्यकार बहुत पहले से इस प्रवृत्ति का जायजा लेते रहे हैं। उदाहरण स्वरूप हम जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के उपन्यास इतिवृत्त, अकाल और मुर्दा घर व अनेक लेखकों की सैकड़ों कहानियां देख सकते हैं। इतनी कि सबका नाम गिनाना संभव नहीं है। फिर भी गांव के पहचान के संकट और उससे उत्पन्न विस्थापन को अभिव्यक्त करने वाली कुछ श्रेष्ठ कहानियां हैं। मृणाल पांडे की हृदय मेयो का मझला, प्रभात त्रिपाठी की महाविद्यालय, प्रमोद भार्गव की लौटते हुए, नमिता सिंह की बसंती काकी, विद्यासागर नौटियाल की फट जा पंचधार। यह भी कहना होगा कि दलित लेखकों का इस क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन, मोहनदास नैमिष राय की पिंजरे तथा सूरज प्रकाश सिंह चौहान, बिमला थोराट, कौशल्या वैसंतरी जैसे अन्य दलित लेखकों की आत्मकथाएं व कहानियां उल्लेखनीय हैं। पर यहाँ मुझे यह रेखांकित करना जरूरी लगता है कि इन सभी कृतियों में और स्त्री विमर्श व समाज शास्त्र के अनेक विवेचनों में भी स्त्री के दैहिक शोषण का बयान ज्यादा रहता आया है। मैं दूसरे पक्ष की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, जो समाज शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह है हमारे समाज में सदियों से व्याप्त धारणा और विश्वास के परिवार में हर कल्याणकारी काम करने का जिम्मा पूरी तरह स्त्री का है, माँ और पत्नी का है। जब युद्ध, फसाद या और कारणों से हुआ विस्थापन अप्रत्याशित अभाव के हालात पैदा कर देता है, तब भी किसी भी तरीके से परिवार का भरण पोषण करने, अन्न पानी, ईंधन, दवा वगैरह जुटाने का काम पूरी तरह स्त्री के जिम्मे रहता है। हर प्रकार का जुल्म सहकर, देह व्यापार करके, न्यूनतम से कम आय पर कमर तोड़ मेहनत करके वह इस गुरुभार का निर्वाह करती है। इसीलिए वह पुरुष से अधिक अन्याय, शोषण व पीड़ा सहती है। प्रेमचंद की कहानी कफन से लेकर स्त्री के इस संस्कार और उससे उत्पन्न पीड़ा का चित्रण हिंदी के सभी नए पुराने लेखकों ने किया है। पर विस्थापन और मानव अधिकार के हनन को उस सामाजिक संस्कार से जोड़कर देखने का काम अभी बाकी है, जो पुरुष को परिवार के कल्याण पालन पोषण की जिम्मेवारी से बरी रखता है और उसे पूरी तरह स्त्री के कंधों पर डाल देता है। हाल में हुए एक अंतर्देशीय नारीवादी सम्मेलन में मैंने देखा कि सांप्रदायिकता तो स्त्रीवादी चिंतकों के कोष में दाखिल हो चुका है, पर अपने देश में गहरी जड़ें जमाए यह संस्कार नहीं। उसके कारण जो विषम स्थितियां पैदा होती हैं, उन्हें न समझने की वजह से ही वे निठारी कांड का सही आकलन नहीं कर पाई। मैं मानती हूँ कि हमारी समझ में शिष्ट और समृद्ध शहरी समाज की गहरी उदासीनता और अधिकारियों का रुक्ष रवैया तभी आ सकता है जब हम माने कि गांव से निष्कासित होकर आए अभावग्रस्त बेरोजगार लोग हमें घुसपैठिया नजर आते हैं। उसी तरह जैसे अमेरिका आदि समृद्ध देशों को गरीब देशों से गैरकानूनी ढंग से आए लोग लगते हैं, जिन्हें आजकल कबूतरबाजों की संज्ञा दी जा रही है। हम उन्हें अपने बराबर मानना नहीं चाहते, उनके बारे में जानना तक नहीं चाहते। साहित्य अपना काम करता रहा है, पृष्ठभूमि तैयार है। अब जरूरत है कि स्त्री विमर्श इस चुनौती का सामना करे और पश्चिम से अलग लीक पर अपनी जरूरत के मुताबिक विमर्श का विकास करे। अब अन्य उन अधिकारों पर भी नजर डाल लें जिनकी मांग स्त्रियां करती रही हैं। निजी तौर पर स्त्री के लिए मानव अधिकारों में वे अधिकार महत्वपूर्ण हैं जो उसे उस हिंसा से अपना बचाव करने में सक्षम बनाएं, जो उसे विशेष रूप से पीड़ित करते हैं। वे हैं घरेलू हिंसा, बलात्कार और यौनिक अनाचार। पृष्ठ 23। घरेलू हिंसा से निपटने में आड़े आने वाला तथ्य यह है कि उसकी शिकार स्त्री उसे जग जाहिर करने से कतराती है, आत्मीय जनों से भी उसे छुपा कर रखती है। स्त्री विमर्श और साहित्य जब उसे सामने लाता है, निर्बल पर सबल के अत्याचार की तरह पेश करता है, तो स्त्री को संघर्ष करने की प्रेरणा भी देता है। एक बात और, घरेलू हिंसा और बलात्कार का आपस में काफी घालमेल देखा जाता है। अगर हम मानकर चलें कि बलात्कार केवल स्त्री की देह पर नहीं होता, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व पर होता है, तो यह मिश्रण और तीखा हो जाता है। साहित्य में इस तरह की घरेलू हिंसा का चित्रण अनेक कृतियों में हुआ है, जिनमें सिम्मी हर्षिता का उपन्यास रंगशाला उल्लेखनीय है। दलित साहित्य में भी उसका बेबाक और व्यापक चित्रण हुआ है, चाहे उसे पुरुषों ने लिखा हो अथवा स्त्रियों ने। मुझे लगता है स्त्री के मानवाधिकारों की बात करते हुए बलात्कार पर विशेष बल देना आवश्यक है, क्योंकि वह सामान्यतः स्त्रियों को शिकार बनाता है। यद्यपि नर बालक भी यौन विकृति जन्य बलात्कार के शिकार बन रहे हैं। बलात्कार का चित्रण साहित्य में शुरू से होता आया है, पर उसे देखने की दृष्टि में जबरदस्त गुणात्मक अंतर आया है, और यह अंतर आया है साहित्य में स्त्री की बदलती छवि के कारण और स्त्री विमर्श के बदलते रूपकों के कारण। 2 दशक पहले कृष्णा सोबती ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे के में एक बलात्कृत स्त्री रथ की पीड़ा और मनोग्रंथि को कथानक बनाया था। ऊपरी तौर पर देखें तो लगता है बलात्कार के बाद वह पुरुष से रिश्ता कायम करने में इसलिए असमर्थ है क्योंकि उसके भीतर एक पाप बोध कर गया है, घर कर गया है, जो समाज के उस पूर्वाग्रह की वजह से पैदा हुआ है, जो बलात्कार को इज्जत लूटने से जोड़ कर देखता है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में अधिकतर कृतियों में बलात्कार को सतीच्युत होने या इज्जत लूटने का पर्याय माना जाता था। अगर हम उसे इज्जत जाना न मानकर हिंसा माने तो पाएंगे कि बाकी हिंसा के शिकार की तरह बलात्कृत स्त्री में भी आक्रोश या रोष होगा पर अपराध बोध नहीं। पर यह भी याद रखना होगा कि बलात्कार की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उस पर कोई एक तर्क लागू नहीं हो सकता। बलात्कार स्त्री के स्त्री होने की अस्मिता का ही हनन नहीं करता, उसके मन में अपने भावात्मक और मानवीय संबंधों के बारे में संशय पैदा करता है, उन पर दोबारा सोच विचार करने पर मजबूर करता है, समाज में उसके स्तर, उसकी हैसियत और छवि पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। स्त्री में कितना भी रोष और प्रतिशोध की चाह हो, भीतर वह द्वंद्व की स्थिति में रहती है। अपनी योग्यता और उत्कृष्टता से भले विश्वास न हटे, पर साथ ही मर्दों पर संदेह और अविश्वास की भावना जरूर तेज होती है। समस्या तब और जटिल हो जाती है जब समाज में कोई परिवर्तन नजर न आए कि कम से कम प्रगतिशील सदस्य तो बलात्कार को हिंसा मानने को तैयार हैं। पृष्ठ 24। इस तथ्य को मैंने अपने उपन्यास कठगुलाब को लिखते हुए गहराई से महसूस किया और उसका व्यापक आकलन करने पर बाध्य हुई। इस दृष्टि से सूरजमुखी अंधेरे के रथ के रूप में एक साधारण स्त्री की दुविधा का सटीक आकलन करता है। इसके साथ यह भी कहना जरूरी है कि समाज भले न बदला हो, पर उसका पथ प्रदर्शन करने वाली ऐसी कहानियां जरूर लिखी जाने लगी हैं जो स्त्री को अपराध बोध मुक्त रहने की छूट देती है। कुछ ऐसी कहानियां हैं, चंद्रकांता की आवाज, चित्रा मुद्गल की प्रेत योनि, इसके अलावा मंजुल भगत की काली लड़की का कर्तव्य, ममता कालिया की जांच अभी जारी है, नास्या शर्मा की बिलाव, सिमी हर्षिता की ठहरी हुई बूंदें, कमल कुमार की नहीं नहीं बाबूजी नहीं, गीतांजलि श्री की अनुगूंज, राजी सेठ की परतें, नमिता सिंह की जंगल गाथा बलात्कार की जटिल प्रक्रिया और प्रकृति की सूक्ष्म छानबीन करती हैं, साथ ही समाज में व्याप्त विषमता को उसके लिए जिम्मेवार भी ठहराती हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि कभी कभी हमारे आलोचक व बुद्धिजीवी तक ऐसी मुद्रा अपनाते हैं जैसे बलात्कार का चित्रण और यौनेच्छा का चित्रण एक ही बात हो। फिल्मों में यह प्रवृत्ति बरसों से हावी रही है, उसने दूषित और विकृत वातावरण को बनाने में हाथ बटाया है, तभी निठारी जैसा कांड संभव हो पाया। मैं जोर देकर कहना चाहती हूं कि हम स्त्री के मानवाधिकारों के हनन को तब तक सही परिप्रेक्ष्य में नहीं रख पाएंगे जब तक बलात्कार को यौनेच्छा का पर्याय मानते रहेंगे। उसका समाधान तभी खोज पाएंगे जब उसे व्यापक मानवीय संदर्भ में रख कर देखेंगे। हमें यह भी याद रखना होगा कि यौनिक अनाचार भी बलात्कार की पूर्व पीठिका तैयार करता है। स्त्री की यौनिकता से ताल्लुक रखने वाली हरकतें, फब्तियां, इशारे आदि, चाहे वे व्यवहार में प्रकट हों या बातचीत में, स्त्री को असुरक्षित महसूस करवाते हैं। वह उसके स्वाभिमान व अस्मिता का हनन करते हैं। उस अवमाननापूर्ण वातावरण में वह वा अपनी सर्वोत्तम कार्यदक्षता पर नहीं पहुंच पाती। यह समान अवसर पर उसके अधिकार का हनन ही नहीं है, मानसिक बलात्कार व सेक्सुअल उत्पीड़न का परिचायक भी है। यह असुरक्षा का वातावरण हर जगह व्याप्त है, दफ्तर में, यातायात में, सड़क पर, हर उस जगह जहां स्त्री पुरुष का आमना सामना होता है। इस असुरक्षा के वातावरण पर स्त्री विमर्श ने बराबर उंगली रखी है। साहित्य में मृणाल पांडे से लेकर लवलीन तक अनेक अनेक लेखिकाओं ने इस विषय पर असंख्य उल्लेखनीय कहानियां लिखी हैं। अन्य अधिकार हैं, संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार। हमें स्वतंत्रता के बाद कानूनी रूप से यह अधिकार मिला जरूर, पर अनेक कमियों के साथ। हिंदुओं के अलावा अन्य धर्मों के सदस्यों पर यह कानून लागू नहीं होता। यहाँ तक कि हिंदू संयुक्त परिवार पर भी जिसका कर्ता पुरुष होता है वह लागू नहीं होता। करीब 60-70 वर्ष पहले जब स्त्री विमर्श पर कोई चर्चा नहीं हुई हुआ करती थी, महादेवी वर्मा ने स्त्री की आत्मनिर्भरता व आत्मसम्मान के लिए संपत्ति में उसके समान अधिकार को अनिवार्य ठहराया था। तब से स्त्री की आर्थिक निर्भरता पर बराबर लेख, कहानी, उपन्यास लिखे जाते रहे हैं। पैतृक संपत्ति में ही नहीं, पति की संपत्ति में भी पत्नी के अधिकारों को हमारा कानून और समाज पर्याप्त महत्व व सुरक्षा नहीं देता। विवाह के दौरान घर बनाने में स्त्री की पूरी हिस्सेदारी रहती है, बल्कि कल्याण का सारा जिम्मा उसी का रहता है। इसलिए तलाक के बाद पूर्व पति की संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार भी उसे अवश्य प्राप्त होना चाहिए। इस क्षेत्र में हमारे यहाँ अनेक कमियाँ हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। अंत में गर्भपात का अधिकार भी उन अधिकारों में से एक है जिसकी मांग स्त्री विमर्श के पुरोधा करते रहे हैं। हमारे देश में कानून हर स्त्री को यह अधिकार देता है, पर आर्थिक व मानसिक स्वतंत्रता के अभाव में स्त्री उसका सही मायनों में उपयोग नहीं कर पाती। आवश्यक यह है कि गर्भपात की निर्णायक शक्ति स्त्री स्वयं हो, पति या परिवार नहीं, वरना जैसा आज हो रहा है आगे भी मादा की भ्रूण हत्या होती रहेगी। जाहिर है आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक रूप से स्त्री का सशक्तिकरण होने पर ही वह निर्णायक शक्ति बन सकती है। इसके अलावा यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्त्री विमर्श के प्रवक्ता यह न भूलें कि गर्भपात की प्रक्रिया स्त्री के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, इसलिए उसे परिवार नियोजन का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। उसका उपयोग स्त्री तभी करे जब अनिच्छा या दुर्योग से नियोजन के साधनों के प्रयोग के बावजूद गर्भ ठहर गया हो, या गर्भ या निर्वाह स्त्री की दैहिक व मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाता हो। यह एक ऐसा विषय है जिस पर स्त्री विमर्श को अपनी तर्क संगत अभी और परिपक्व करती है करनी है। भ्रूण के लिंग निर्धारण पर कानूनी पाबंदी लगाना या उसे अवैध ठहराना उसे रोकने में असफल रहा है और आगे भी रहेगा। मादा भ्रूण हत्या रोग नहीं लक्षण भर है, रोग है आम स्त्री की अशिक्षा और आर्थिक विपन्नता जो समाज में व्याप्त विषमता के वातावरण में उसे अपने निर्णय स्वयं लेने की छूट नहीं देती। साहित्य में भी मादा भ्रूण हत्या और बलात्कार को केंद्र में रखकर काफी कृतियां आती रही हैं, पर गर्भपात का तथाकथित अधिकार, उसका दुष्परिणाम, स्त्री सशक्तिकरण और मादा भ्रूण हत्या के जटिल अंतर संबंध पर बहुत कम लिखा गया है। आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में इस विषय को विमर्श और रचना दोनों में अवश्य जगह मिलेगी। E 421 भूतल GK2 नई दिल्ली 110048। लेख पृष्ठ 25 पुरुष वर्चस्व और स्त्री मुक्त की चुनौतियां परमानंद श्रीवास्तव। मराठी कवित्री मल्लिका अमर शेख स्त्री स्वाधीनता को वह अंधा आईना मानती है जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन उनकी कविता स्त्री विमर्श के मुद्दे पर टिप्पणी भी करती है। औरतें करती हैं साफ अपने बदन को जैसे कोई मुर्गी को छीलता है सपाटे से, कपड़े धोती हैं, घर साफ करती हैं, स्वेटर बुनती हैं, काफी कुछ यह वह करती हैं। स्वतंत्रता के आईने में कुछ भी दिखाई नहीं देता, नारीत्व जो खो डालता है, नारी को धीरे धीरे स्वाद ले लेकर, उस पर आपत्ति नहीं करती नारी कोई भी। पुरुष सत्तात्मक वर्चस्व का आतंक सारी दुनिया में है, जबकि स्त्रियां सभी क्षेत्रों में आर्थिक स्वाधीनता, साहित्य, बहुत कुछ पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। अधीनता के सभी मिथकों को तोड़कर वे नई आज़ादी हासिल कर रही हैं। पुरुष की भूमिका भी अब बदल सकती है, वह उद्धारक न होकर सहज रूप से सहचर मित्र हो सकता है। शिक्षा, प्रशासन, पत्रकारिता सभी क्षेत्रों में स्त्रियां आगे आना चाहती हैं। शारीरिक संरचना की भिन्नता के बावजूद वह पुरुष के अपने इलाके में भी दखल दे सकती हैं। स्त्री मुक्ति फिर भी प्रश्नांकित है और कई तरह से स्त्री विमर्श उलझन भरा है। कहना न होगा कि आर्थिक स्वतंत्रता मित्रता काफी नहीं है। यह एक त्रासा सच्चाई है कि कामकाजी महिलाएं हर समय घेरे में बंद दिखती हैं। परिवार में देर से आए तो उनका आचरण संदिग्ध माना जाता है। वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल की भी अपनी आचार संहिता होती है। वयस्क होने पर अपने ही बच्चे अभिभावक हो उठते हैं। आज भी पुरुष साथी से मिलने पर स्त्री अपने ही प्रति जवाबदेह हो उठती है। अप्सराओं के मिथक से निकलकर ही हम एक मामूली स्त्री की आज़ादी या उत्पीड़न के निहितार्थ समझ सकते हैं। आज का बाजार उपनिवेशवाद दिखा रहा है कि स्त्री अपने चुनाव से लंबे समय के पार भी सुंदर, सुघड़, मॉड यानी मॉडल जैसी दिख सकती है। यहाँ सौंदर्य प्रसाधन के चमकीले ब्रांड, योग, खान पान के नए ढंग टेलीविजन के पर्दे पर दिखाए जाते हैं। सेल फोन पर SMS आता है, अगर आपको स्मार्ट बने रहना है तो वजन घटाइए। घरों में ऐसे व्यायाम संयंत्र हैं जो अमीर स्त्रियों को जीवन भर सुंदर दिखने के लिए तौर तरीके बताते हैं। एंकरिंग करने वाली लड़की को दिमाग के साथ देह से सुंदर दिखना चाहिए। यहाँ मुक्ति स्त्री का अपना चुनाव है। यहाँ ब्यूटी कल्चर में बहुत सी आज़ादी व्याप्त है, पर कोई आज़ाद स्त्री जनाबाई की तरह अपने पति या प्रेमी से यह तो नहीं कह सकती, हे माधव देखो न कितने तो काम धरे हैं सिर पर, इतना आटा गूंथना है अभी, इतने कपड़े कूटने हैं, आओ भी हाथ बटा दो थोड़ा, या फिर तुम हेर दो जुए की जरा, कुछ तो करो। यहाँ तो एक पार्टी कामरेड भी पति हो तो संगठन की बैठक के समय जुझारू कार्यकर्ता पत्नी को किचन का ही काम सौंप सकता है। या पुरुष सत्तात्मक वर्चस्व नहीं है तो है क्या? विडम्बना यह कि स्त्री की मुक्तिदाता भी स्त्री उत्पीड़न में ही अपना पुरुषत्व सार्थक पाते हैं। पृष्ठ 26। उनकी धारणा भी पत्नी का ठंडी, कोल्ड या गर्म हार्ट होना उन्हें नापने का एक ढंग हो सकता है। इन दिनों महात्मा गांधी पर सुधीर कक्कड़ या राजमोहन गांधी की किताबें गांधी के विस्मयप्रद ब्रह्मचर्य का मिथ तोड़ रही हैं। समय है कि यौन शुचिता को स्त्री के नज़रिए से भी देखा जाए। अनामिका ठीक पूछती हैं, प्रेम क्या अनैतिक कैटेगरी है? प्रेम और सेक्स का फर्क इस हद तक मिट गया है जैसे स्कूल में लड़के लड़कियां शुचिता भूलकर सेक्स एक्ट के गिरफ्त में हैं। इसमें अश्लील CD आदि की ब्लैकमेलिंग भी शामिल है। लड़कों लड़कियों को ड्रग एडिक्ट दिखाया जा रहा है। संदेश यह जा रहा है कि स्त्रियां स्वच्छंदता की चरम सीमा पर हैं, वे उड़ रही हैं और उनकी कोई मर्यादा नहीं है। यह पुरुष प्रभुत्व को आबाद सुरक्षित रखने वाले दृश्य अदृश्य तंत्र के कारण है। पिछले दिनों किसी वैलेंटाइन डे को शिवसेना ने विदेशी नंगई करार दिया और जोड़ों पर पार्कों में डंडे बरसाए। वे गाँवों में अब तक हो रहे बाल विवाह को नहीं रोक पा रहे हैं। बाल विवाह की खबरें Page 3 पर छपती हैं और क्राइम रिपोर्टर की निगाह नहीं पड़ती। हिंदू संगठन अधिकतर स्त्री मुक्त के विरोधी हैं। वाटर फायर का विरोध इसी का उदाहरण है। प्रभुत्वशाली पुरुष सत्ता के लिए आचार संहिता अलग है, क्योंकि वहाँ पूरी छूट है। स्त्री मुक्ति को अब भी वही समाज नकारात्मक देहवाद मानता है। उस समाज को यह भी पता नहीं कि वेश्याएं सेक्स वर्कर्स कही जाती हैं। उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है। उन्हें भोगने वाला तथा कथित बद्ध समाज कस्टमर या ग्राहक कहा जाता है। बांझ स्त्री अपने ही कारणों से बांझ मानी जाती है। चिकित्सक से जांच कराने को पुरुष तैयार नहीं है। नंस या साध्वियों के मन में यौनिकता का ख्याल नहीं आना चाहिए, जबकि फादर की कामेच्छा और उनके द्वारा बलात्कार कोई केस नहीं बनता। बहुत पहले इसी थीम पर मन्नू भंडारी ने कहानी लिखी थी, ईसा के घर इंसान। साहसपूर्वक संतोष चौबे का उपन्यास क्या पता कामरेड मोहन आया है, जिसमें कई विमर्शों के भीतर इस स्त्री मुक्ति का आख्यान भी है। काला पादरी में यह मुद्दा अलग ढंग से स्त्री के पक्ष में आता जाता है। कवि थेरी गाथाओं में यह विमर्श धम्म के वर्ण के बहाने उठा था। हमारे समय के कथा साहित्य में जहां अलका सरावगी के उपन्यास शेष कादंबरी में स्त्री यातना और उत्पीड़न का अनुभव प्रत्यक्ष है, वहां कई कहानियां स्त्री उत्पीड़न और मुक्ति को अपने ढंग से दिखाती हैं। पिछले दिनों आउटलुक में रजनी गुप्त की कहानी गठरी स्त्री यातना का मार्मिक वृत्तांत थी। वहीं कथाक्रम के जनवरी मार्च 2007 अंक में स्त्री मुक्त की कहानी है, फिर आया बसंत। रामधारी सिंह दिवाकर ने एक माँ के स्वैच्छिक मुक्तिवरण को दूसरी पीढ़ी की अन्नू की दृष्टि से देखा है। लंबे शोक काल के बाहर मम्मी की यह नई मुक्ति अन्नू को चौंकाने वाली है। मम्मी का अरसे बाद हेयर डाई करना, रजनीगंधा फिल्म की धुन गुनगुनाना विरल आत्मुग्धता का क्षण जान पड़ता है। कामेश से उनका पूर्व राग बहुत कुछ खोल जाता है। कहानी के अंत में अपने में खोए कामेश मम्मी के कानों में अन्नू के शब्द बहुत कुछ अनकहा छोड़ जाते हैं। मैं जाती हूँ मम्मी, इनको तब तक रोके रखिएगा, 10:30 बजे तक आ जाऊंगी। दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए मम्मी, यहाँ पवन करण की माँ विषयक कविताएं याद आएंगी जो माँ के नए प्रेम को लक्ष्य करके लिखी गई हैं। सिमोन द बोवा के शब्द हैं, जब तक समाज में निजी संपत्ति की अवधारणा प्रचलित रहेगी और पुरुष स्त्री को अपनी संपत्ति मानेगा, तब तक स्त्री के द्वारा किया गया व्यभिचार हीनतम अपराध माना जाएगा। जहाँ स्त्री मुक्ति है, वहाँ पुरुष सत्तात्मक दमन का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रतिवाद है। आज प्रबंधन या प्रशासन के क्षेत्र में स्त्रियाँ आगे आ रही हैं और वे पुरुष की खेती नहीं है। पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था में प्रतिभावान स्त्री भी वस्तु या माल कही जाती है। यहाँ पद, अधिकार, पैसा से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर सारे विज्ञापन स्त्री देह के बहाने माल ही तो बेच रहे हैं। विचारणीय है कि ताकत की कुल अवधारणा पुरुष तक क्यों सीमित की गई है। प्रेम, सेवा, समर्पण जैसे शब्द इसी ताकत के हथियार हैं। यह है पुरुष सत्तात्मक समाज में स्त्री उत्पीड़न का यथार्थ। नाबालिग लड़कियों के अपहरण के पीछे पड़ोसी संबंधी तक होते हैं। कभी उद्भावना ने कामकाजी महिला विशेषांक प्रकाशित किया था। प्रकाशन वर्ष 2000 से अब तक स्थितियां अधिक भयावह हुई हैं। वहीं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के अंतर्गत वरिष्ठ IAS अधिकारी, जूनियर महिला एग्जीक्यूटिव, सीनियर डॉक्टर, अवर सचिव आदि ने बताया था कि उनके बॉस या वरिष्ठ सहकर्मी उन्हें उपभोक्ता वस्तु जैसा ही भाव देते हैं। पुरुषों की मर्दानगी के आगे वे अपनी गुणवत्ता या अनुभव क्षमता का कोई दावा नहीं कर सकती। न्यायालय के दिशा निर्देश यहाँ सर्वथा अप्रासंगिक होते हैं। सारे धर्म स्त्री उत्पीड़न को मुद्दा मानने से इनकार करते हैं। महाश्वेता स्त्री को वर्गीय दृष्टि से देखती हैं। दुनिया के अधिक विकसित देशों में भी स्त्री उत्पीड़न आम है। चीन में स्त्रियां यौन वस्तु के रूप में देखी जाती हैं। यह जरूर है कि वहाँ स्त्री प्रतिरोध के लिए भी जानी जाती है। यहाँ भी मैसवा जैसे संगठन हैं जो स्त्री विरोधी हिंसा का विरोध करने के लिए आगे आते हैं, पर यह सीमित रूप में है। जरूरी है कि पुरुष सत्तात्मक दम्भ को चुनौती दी जाए। विमर्श से अधिक जरूरी है व्यवहार। आतंकवाद के जितने ठिकाने हैं उनमें स्त्री अस्मिता, शिक्षा, आज़ादी, स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं है। गरीबी एक बड़ा मुद्दा है, पर साधारण मुस्लिम परिवारों में टाट के पर्दे के पीछे का वृत्तांत त्रासदी है। तहमीना दुर्रानी का कुछ अलग अलग प्रसंगों में दोहराया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में श्रमजीवी महिलाएं दिन रात खटती हैं। वहां पुरुषों के निठल्लेपन को एक मामूली रीत मानकर दरकिनार कर दिया जाता है। सभ्य समाज में औरतें कमोबेश उन्हीं स्थितियों से गुजरती हैं जो दूसरे गुमनाम क्षेत्रों में। महाराष्ट्र में कामगार औरतें जागरूक तो हैं, वे लोकल बसों में आती जाती हैं, पर कई बार वे भी असुरक्षित हैं। खासकर दंगों के इतिहास में स्त्रियों का बर्बर उत्पीड़न गुजरात का त्रासद यथार्थ है। कुलीनतावाद की ग्रंथियां भद्र समाज में एक अलग अंधेरे समय का साक्ष्य हैं। यह क्रूरता का वृत्तांत है। दलित स्त्रियों का उत्पीड़न रोज की खबरों में है। आंकड़े बताते हैं कि यौनिक हिंसा की खबरें गायब कर दी जाती हैं। युद्धकालीन स्थितियों में स्त्री बहुत बड़े पैमाने पर यौन हिंसा का शिकार होती है। विजेता पक्ष इसे अपनी जीत का विषय मानता है। भूमंडलीकरण के दौर में एक ओर स्त्रियां अंतरिक्ष यात्रा पर हैं, दूसरी ओर बसों, ट्रेनों में सुरक्षित नहीं हैं। स्त्री उत्पीड़न है तो है, क्या फर्क पड़ता है। पृष्ठ 27। विश्व मंडी में आज भी स्त्री खरीदार से अधिक बिकाऊ वस्तु है। एक ओर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्त्री सशक्तिकरण के दावे हैं, दूसरी ओर मजदूरी ने आज भी सामंतों के लिए शोषण का बहाना है। यह बेगार से अधिक यातनाप्रद स्थिति है। राज्य पहले जितनी सुविधा भी स्त्री को नहीं दे पा रहा है। एक शिक्षित स्त्री जॉब करना चाहे तो पहले उसे परिवार से अनुमति लेनी पड़ती है। अवज्ञा उसे परित्यक्ता की स्थिति में ला छोड़ती है। वेश्यावृत्ति के जो नए रूप हैं उनमें स्त्री कभी कभी खुद रमने को बाध्य होती है, क्योंकि गृहस्थी की दुनिया में उसे हिंसा का शिकार होना पड़ता है। जहाँ देह को बिकना है वहाँ सजने संवरने के बाजार पहले से सजग हैं। प्रेमचंद ने स्त्री उत्पीड़न के लिए पुरुष वर्चस्व को ही जिम्मेदार ठहराया है, जिन्हें वे शिक्षित भाई कहते हैं। वे भद्र मानसिकता वाले लोग हैं जिन्होंने स्त्री को खुद बाजार मुहैया कराया है। उनके शब्द हैं, हमें वेश्याओं को पति समझने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे शिक्षित भाइयों की ही बदौलत दाल मंडी आबाद है, चौक में चहल पहल है, चकलों में रौनक है। जिस समाज में अत्याचारी जमींदार, रिश्वती राज कर्मचारी, अन्यायी महाजन, स्वार्थी बंधु आदर और सम्मान के पात्र हों, वहां दाल मंडी क्यों ना आबाद हो। यह एक पुरुषत्तात्मक क्रूर व्यवस्था का मनोविनोद है, जहां स्त्री उत्पीड़न दिखता नहीं बल्कि स्त्री इसमें संतुष्ट नजर आती है। दलित पुरुष भी अपनी मर्दानगी के लिए स्त्री को दबाकर ही रखना चाहता है। प्रशासनिक पदों पर काम करने वाली स्त्रियां जहां उच्चतर अधिकारी के लिए उपलब्ध मानी जाती हैं, वहां छोटे छोटे कारणों पर भी समस्तरीय पति से पीट सकती हैं। सती प्रथा रूप कुंवर की कहानी के साथ खत्म नहीं हो गई है। आज भी 15-16 साल की एक किशोरी लड़की को देवी बनाकर नया उत्पीड़न चक्र शुरू हो जाता है। पर देखें कि लंबे प्रचार प्रसार के बीच चढ़ावे की रास किस क्रूर पुरुषसत्ता के हाथ आती है। धार्मिक अंधविश्वासों का नया उभार स्त्री के शोषण का ही हथकंडा है, एक और तरह की बलि ही है। एक तांत्रिक का किशोरी के साथ बलात्कार अंधविश्वास के कारण ही संभव हुआ, यह अभी की खबर है। यही समय है जब विज्ञान के नए युग में भ्रूण परीक्षण आम है। स्त्रियों की आबादी उत्तरोत्तर घट रही है। इस क्रूर हिंसक कार्रवाई को खाते पीते वर्ग ने वैध मान लिया है। दूसरी ओर अशिक्षित मुस्लिम परिवारों में लड़कियों की संख्या इतनी बड़ी है कि उन्हें विवाह के नाम पर दुबई के संपन्न अधिक व्यय प्राप्त नवाब पत्नियों के हवाले कर दिया जाता है। वहां कितनी लड़कियां एक से दूसरे को बेची जाती रहती हैं, यह सब इस्लाम के नाम पर। यही समय है जब फैशन डिजाइनर्स का विश्व बाजार है। मिस इंडिया के नकल पर सौंदर्य प्रतियोगिताएं कस्बों तक में आयोजित हो रही हैं। उनसे द्व्यर्थी अश्लील आइटम संग गवाए जा रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों के नाम ही इस क्रूर घिनौने कांड का भेद खोलते हैं। इन स्थितियों में भी स्त्री मुक्ति मुद्दा ही नहीं बनता। जब से भोजपुरी फिल्मों का बाजार बढ़ा है, नग्नतावाद के लिए मुक्त प्रोत्साहन है। लैंगिक विमर्श का एक दुखद पहलू यह है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में विवाह योग्य लड़कियां अनुपलब्ध हो गई हैं। यह भ्रूण हत्या की त्रासदी बताने के लिए काफी है। चटपट विवाह के लिए लड़के पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार की सीमा तक जाते हैं और मंदिर आदि में विवाह संपन्न कर आते हैं। वे इसके लिए कुछ भी करते हैं। यहीं से स्त्री उत्पीड़न का सिलसिला शुरू होता है। जाट परिवारों में द्रौपदी की नियति भी दोहराई जाती है। कई भाइयों के बीच एक पत्नी, यह कोई पौराणिक कल्पना नहीं है, सच है। भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार ने पालना जैसी नकारात्मक योजना बनाई है। लड़की को जन्मते ही सरकारी पालने में छोड़ सकते हैं, पर ऐसी योजनाओं का हश्र किसी से छिपा नहीं है। प्रसंगवश अभी अभी हंस के मार्च 2007 अंक में सोनी सिंह की लंबी कहानी गाड फादर का फेमिनिस्ट फार्म छपी है, जो स्त्री मुक्त की उड़ान और दारुण अंत की फंतासी है। जॉर्ज आरवेल के एनिमल फार्म की याद दिलाती एक युवा लेखिका की यह कहानी पंछी जात का जो रूपक बनाती है वह उत्तरोत्तर भयावह होता जाता है। एक ओर सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा है, दूसरी ओर यह भयावह कल्पना की उड़ान पर जाने वाली स्त्री का भविष्य अनिश्चित है। पुरुषत्तात्मक वर्चस्व गॉड फादर की कल्पना से मेल खाता है। मेधा पाटेकर अरुंधति राय की लड़ाई के अर्थ भिन्न हैं। शिवसेना का प्रमुख पत्र सामना बताता है कि यौन हिंसा के लिए मुख्यतः जिम्मेदार पुरुष नहीं स्त्रियां हैं जो उत्तेजक परिधानों में निकलती हैं। जींस या मिनी स्कर्ट ऐसे ही परिधान हैं। बलात्कार जैसी घटना की रपट इसलिए नहीं लिखाई जाती कि बदनामी होती है, इससे बलात्कारी पुरुष को आबाद छूट मिल जाती है। जब तक महिला आयोग यौनिक हिंसा या बलात्कार की नोटिस ले, तब तक बात पुरानी पड़ चुकी होती है। सूरत में बाबरी मस्जिद के ध्वंस काल में चुन चुन कर घर जलाए गए, स्त्रियां बलात्कृत हुईं। न्याय व्यवस्था ऐसी है कि अधिकतर बलात्कार के मामलों में साक्ष्य सुलभ नहीं होता, लड़की मार दी जाती है तो बलात्कारी की पहचान कैसे हो। सुधा अरोड़ा ने एक विश्लेषण में बताया है कि अधिकतर हिंदू उन्माद के दायरे में पुरुष की स्त्री के प्रति हिंसा को पारंपरिक न्यायोचित ठहराया जाता है। माँ बच्चे को पीट सकती है तो पति पत्नी को भूल चूक के लिए क्यों नहीं पीट सकता है। लैंगिक विमर्श के दायरे में यौन हिंसा का पक्ष वह कुतर्क है जिसका कोई जवाब नहीं है। निम्न मध्य वर्ग में यौन हिंसा वधू दहन के बीच दहेज जैसा मुद्दा होता है। उच्च कुलीन परिवारों में स्त्री पुरुष के सामने अपना अहम प्रकट करती है तो उससे भी उलझने की सीमा उत्पीड़न की चरमता हो सकती है। कामकाजी औरतें भी आज़ादी को लेकर संतुष्ट नहीं हो सकती हैं, उपेक्षा भी उत्पीड़न के दायरे में ही आती है। पुरुष सत्तात्मक समाज में स्त्री मुक्ति की चुनौतियां अनेक हैं। एक तो यही कि स्त्री पुरुष समानता संभव हो, सारे सामाजिक नियम यहाँ मुक्ति विरोधी हैं। अधिकतर यह मानकर चला जाता है कि स्त्री की नियत अधीनता को स्वीकार करना है, स्त्री पुरुष की संपत्ति है, वही तय करता है कि स्त्री शिक्षा को कितना महत्व देना है, उसे जॉब के लिए कितनी आज़ादी देनी है। महादेवी श्रृंखला की कड़िया में स्त्री मुक्ति का पाठ बनाती हैं जो अब चर्चा में है। उनकी रहस्यवादी कविताओं के बीच में मुक्ति के अभिप्राय कम न होंगे। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। अधिकतर संभ्रांत स्त्रियां चुप रहना चाहती हैं, उनकी आवाज़ चुप्पी कभी चीख या रुलाई में बदल सकती है। गगन गिल की कविता का एक अंश इस चुप्पी का आख्यान है। पृष्ठ 28। जुबान के बारे में वह कभी नहीं सोचेगी, भूल कर भी नहीं, न जुबान के बारे में, न हथेली के बारे में, न होठों के बारे में। जुबान के बारे में न सोचना संकेत है कि मुक्ति कामी स्त्री को भी प्रायः चुप रहने की बाध्यता है। देह में सीमित स्त्री दैहिकता के बारे में चुप है। स्त्री मुक्ति के दावे संगठनों में मंचों से किए जाते हैं, पर स्त्री उत्पीड़न के आंकड़े कम नहीं होते। मीरा नंदा ने भारतीय प्रबोधन संबंधी अपने लंबे निबंध में एक प्रश्न यह भी पूछा है, लेकिन क्या चीज़ है जो विधवा को अशुभ बनाती है, और ऐसी क्या बात है जो सती को देवी बनाती है। क्या इस नैतिक व्यतिक्रम की जड़ें हिंदू धर्म की बुनियाद में ही हैं। ये सभी युक्तियां स्त्री उत्पीड़न का हाल बयान करती हैं। जेंडर और जात का मामला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बंगाल में एक युवा विधवा को जो यातना दी जाती है वह औसत समाजों से भिन्न है। केश मुड़ाने के साथ उसे स्वस्थ सुंदर भी नहीं दिखना है। जहाँ से सुधारवादी आंदोलन शुरू हुए वहीं स्त्री उत्पीड़न के तथ्य भयावह हैं। स्त्री का आत्मनिर्भर या स्वावलंबी होना पुरुष सत्तात्मक समाज को रास नहीं आता। कल्याण के नारी अंक में जो बात बार बार दोहराई गई है कि स्त्रियों में जागरण नाम से संचालित आंदोलन से नारी जाति का कल्याण होने के स्थान पर हानि अधिक हो रही है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि स्त्री मुक्ति का मिथ कई बार बौद्धिक या काल्पनिक ठहराया जा सकता था। भारतेंदु युग में भी स्त्री शिक्षा के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित थीं। बालाबोधनी पत्रिका का नियमित स्तंभ था, स्त्रियां क्या करें या स्त्रियां क्या न करें। अवचेतन में वह विभाजक रेखा आज तक बनी हुई है। पति के न रहने पर पैसे कौड़ी न गिने, घर की देहरी न लागें, साज श्रृंगार न करें। महादेवी वर्मा श्रृंखला की कड़िया में लिखती हैं, समाज ने स्त्री के संबंध में अर्थ का ऐसा विषम विभाजन किया है कि साधारण श्रमजीवी वर्ग से लेकर संपन्न वर्ग की स्त्रियों तक की स्थिति दयनीय ही कही जाने योग्य है। वह केवल उत्तराधिकार से ही वंचित नहीं है, वरन अर्थ के संबंध में सभी क्षेत्रों में एक प्रकार की विवशता के बंधन में बंधी हुई है। कहीं पुरुष ने न्याय का सहारा लेकर और कहीं स्वामित्व की शक्ति से लाभ उठाकर उसे इतना अधिक परावलंबी बना दिया है कि उसकी सहायता के बिना संसार पथ में एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकती। इस बीच स्त्री स्वावलंबी बनी हुई है, पर व्यवहार में महादेवी का कथन आज भी प्रामाणिक जान पड़ता है। घर और बाहर का द्वंद आज भी स्त्री के सामने ज्वलंत प्रश्न की तरह है। क्या विडंबना है कि संसद में महिला सदस्यों को 33% आरक्षण देने के सवाल पर भारत में सहमति नहीं बन पा रही है, जबकि पाकिस्तान इस दृष्टि से कहीं आगे है। मीडिया सहित जिन क्षेत्रों में स्त्रियां पाकिस्तान में सक्रिय हैं, उन्हें सामाजिक प्रोत्साहन भी भरपूर मिल रहा है। यहाँ तो प्रशासन बाल विवाह तक को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। कॉल सेंटर से रात बिरात लौटी लड़कियां टैक्सी में जाते अपने को सुरक्षित नहीं पाती। नूर जहीर ने पाकिस्तान से लौटकर जो यात्रा वृत्तांत लिखा है, वहां स्त्री मुक्ति कहीं ज्यादा आश्वस्त करने वाला मुद्दा है। स्त्री मुक्ति के निहितार्थ व्यापक हैं, यौन मुक्ति की स्त्री मुक्ति नहीं है। शेष समाज में स्त्री की बढ़ती भागीदारी ही स्त्री मुक्ति का एक ठोस आधार हो सकता है। चिकित्सा, स्वास्थ्य, जनसंचार, न्याय सभी क्षेत्रों में स्त्री के हस्तक्षेप की एक कारगर भूमिका दिखनी चाहिए। वे दूसरे दर्जे की नागरिक क्यों मानी जाए? कई बार वे पंचायत प्रधान मानकर संतुष्ट हो जाती हैं, जबकि सूत्र संचालन परिवार का पुरुष मुखिया ही करता है। यह नामांकन से ही प्रकट होता है कि वह किसका अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रही है। मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास चाक स्त्री मुक्त के विमर्श को कई स्तरों पर खोलता है। सुनो मालिक सुनो में उनकी टिप्पणियां सीधे इन मुद्दों पर केंद्रित है। वे इस विमर्श को घर आंगन तक ले जाती हैं। मैत्रेयी पुष्पा के अनुसार स्त्रियां अंतर विरोधों की पिटारी हैं। इरावती चार में कुसुम भट्ट की कहानी कहीं कुछ जल रहा है। पौराणिक कल्पना से विनोदपूर्ण छेड़छाड़ है। स्त्री विनोद स्त्री मुक्ति का ग्लैमर महानगरों में साफ दिखता है, जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने स्त्री की मुक्ति का दायरा बृहत्तर बनाया है। कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ है। यहां प्रेम सहज है, डेट पर जाने की आज़ादी है, सह जीवन तक के अवसर हैं। पर ग्रामीण क्षेत्र में प्रेम करने वाले को दिन दहाड़े पंचायत की मौजूदगी में मार दिया जाता है। यहाँ निर्णायक है पुरुषत्तात्मक आतंक। शिवमूर्त की कहानी तिरिया चरित्र और क्या कहती है। पंचायत यहाँ निरपराध लड़की को भरी सभा में बेइज्जत करता है और लड़की दागी जाती है ताकि उसका रूप दंभ मिट जाए। मुश्किल यह है कि युवाओं के बीच यह दंड दिया जा रहा है और युवा अंततः स्त्री शरीर की नग्नता का मजा लेते हैं। पंचायत का तंत्र वचनशील पुरुष व्यवस्था द्वारा संचालित है, वही नियामक है। क्रूर यथास्थितिवादी कई तरह की विडंबनाएं स्त्री विमर्श में उभरती हैं। यही लड़के जो दबंग हैं किसी लड़की को हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अक्सर पत्नी के प्रति उदासीन तथा खीझे नजर आते हैं कि माँ उनसे यही अपेक्षा करती है। भद्र परिवारों में बेटे पर माँ का अधिकार इतना प्रबल होता है कि वह बात बात पर पत्नी को प्रताड़ित करता है ताकि माँ संतुष्ट दिखे। स्त्रियों की स्थिति प्रति आक्रामकता पर सर्वव्यापी चुप्पी दिखाई देती है। अक्सर लड़कियां नाकारा, ठंडी, यौन कुंठित मान ली जाती हैं। कोई सर्वेक्षणकर्ता इन प्रसंगों की नोटिस नहीं लेता। पारिवारिक कलह निपटाने वाली छोटी अदालतें भी इनके विस्तार में कम जाती हैं। इसका दूसरा पहलू यह है कि लड़कियां मीडिया क्रांति में आगे आना चाहती हैं। मीडिया के चेहरे ने उनमें आश्वस्ति पैदा की है कि वे नलिनी सिंह, सुनीता विलियम्स, सानिया मिर्जा हो सकती हैं। छोटी कस्बों से आई लड़कियां जैसे MBA करके तुरंत जॉब चाहती हैं और जॉब उन्हें मिल भी जाता है, वैसे ही BJ, MJ या अन्य पाठ्यक्रम पूरा करके पत्रकार बनना चाहती हैं। एक लड़की सुप्रिया अगर पोस्टर क्रांति में भविष्य देखती है तो उसका पति भिन्न फोटोग्राफी में क्रांति खोजता है। इधर इन्हीं कार्यक्षेत्रों में साथ काम करते करते विवाह की सहमति बन जाती है। दोनों अपने अभिभावकों को सूचित भर कर देते हैं पृष्ठ 29 कि उन्होंने उनकी चिंता दूर कर दी है। देर तक अविवाहित रहने पर भी लड़की कुंठित नहीं होती। सुधीश पचौरी कहते हैं, विकास मूलक मीडिया की एक बड़ी भूमिका एक विकासात्मक समाज बनाने के रास्ते आसान करना है, इसलिए उसमें लिंग भेदक, जाति भेदक और धर्म विभेदक तत्वों को ज्यादा हवा नहीं दी जा सकती। स्त्री मुक्ति का यह एक सकारात्मक पहलू है, उधर पुरुष वर्चस्व इस नई मुक्ति की नोटिस नहीं लेता। अक्सर स्त्री हृदय परिवर्तन के लिए बाध्य होती है। महुआ माझी की कहानी ड्राफ्ट इरावती फोर इसका संकेत है। 19वीं सदी में पंडिता रमाबाई जैसी स्त्रियों ने अपने को समय के प्रति सहज प्रश्नोन्मुख बनाया था। पंडिता रमाबाई 1885 के एक पत्र में लिखती हैं, मुझे लगा कि मुझे जरूरी प्रश्न उनसे भी पूछना चाहिए जो मुझे अध्यात्म के निकट ला सके थे। यह स्वतंत्र विचार की शुरुआत थी। मुझे प्रश्न पूछते हुए अविनम्र नहीं मान लेना चाहिए। आज कई बार विधि निषेध के बारे में नई स्त्री भी आसानी से सवाल नहीं पूछ सकती। विवाह के मामले में धर्म या मजहब की सीमा लांघना आज भी कठिन है। 1943 में इरासेन को लगा कि इच्छा पूर्वक कोई लड़की कठोर पारिवारिक सामाजिक वर्जनाओं को स्वीकार नहीं कर पाती, पर चुप रहती है। कमला देवी चट्टोपाध्याय 40 के आसपास स्त्री की आर्थिक आजादी का प्रश्न उठा रही थीं। एक औपनिवेशिक समाज के अंतर्विरोधों से वे परिचित थीं और पूंजीवाद साम्राज्यवाद के गठजोड़ के भेद खोल सकती थीं। किसान चेतना को संगठित करना आज़ादी की लड़ाई का जरूरी हिस्सा था। इस संगठन में स्त्रियां हाशिए पर क्यों रहें? श्रमिक स्त्रियां आखिर आधा काम खुद करती हैं। आगे पीछे के इन विमर्शों को अलगा कर नहीं देखना चाहिए। स्त्री सुबोधनी से स्त्री लेखन आज बहुत आगे है। विडम्बना है कि पहले के वर्ग संघर्ष विमर्श में यौनिकता का कोई मुद्दा न थी। सेक्स पर बात करना भी वर्जित था। आज ये वर्जनाएं खत्म हैं और वात्स्यायन के कामयोगी जैसे नए पाठ बन रहे हैं। देह की स्वतंत्रता दिमाग की स्वतंत्रता का दूसरा पहलू है। स्त्री सशक्तिकरण में ये स्वतंत्रताएं अभिन्न हैं। कैरियर वुमन बनने की स्थिति में लड़कियां यौनिकता के तमाम पूर्वाग्रहों को लेकर जिरह करने में आगे हैं। मैत्री और प्रेम का भेद मिट गया है। पुरुष वर्चस्व के आंकड़े ढांचे का यह कठोर प्रतिवाद है। यह भी हमारे समय का यथार्थ है कि जहां महत्वाकांक्षी स्त्रियां विश्व बाजार में हस्तक्षेप कर रही हैं, कईयों का कार्यक्षेत्र व्यवसाय है जिसमें बड़ी पूंजी लगी हुई है। स्त्रियां विश्व बाजार की प्रचलित दलाली से उलझ रही हैं, हवाई यात्राओं में निश्चिंत हैं। वहीं स्त्री विरोधी बर्बरताएं खत्म नहीं हो गई हैं। अल्प वयस्क बच्ची से बलात्कार जैसी खबरें छपती रहती हैं। स्त्री मुक्ति का कोई बड़ा आंदोलन पेश में नहीं है। ले देकर एक महिला आयोग है जो कभी कभार ही इन मुद्दों को उठा पाता है। यह कहना काफी नहीं है कि आंदोलन तो दृश्य से ही बाहर है। किसान मजदूरों तक के आंदोलन नहीं है और तो और साहित्य में ही कोई बड़ा आंदोलन नहीं है। सामाजिक आंदोलन है तो जातिवाद के दायरे में है। छोटी छोटी लड़ाई उनकी सीमा है। स्त्री विरोधी हिंसा को रोकने के लिए पुरुषों के संगठन जरूर हैं, पर वहाँ भी स्त्री पुरुषों में साथीपन कहने भर को है। पिछड़े क्षेत्रों की औरतें तो रैलियों में लाई जाती हैं, यद्यपि उन्हें मुद्दों का पता नहीं होता। भद्रवर्गीय स्त्रियां सांप्रदायिकता विरोधी रैली में जाने से हिचकती हैं। धार्मिक पर्व अनुष्ठान, भागवत कथा, बाबावाद, इनमें जरूर वे शरीक होती हैं। 21वीं सदी में भी धर्म के लिए सम्मोहन स्त्रियों में आम है। अधिकार चेतना या स्त्री मुक्ति की चेतना वांछित रूप में दिखाई नहीं देती। आज पुरुष वर्चस्व भी एक जटिल मुद्दा है। जैसे स्त्री मुक्ति इकहरा मुद्दा नहीं है, पुरुष वर्चस्व का दायरा बड़ा मुद्दा है, जबकि स्त्री मुक्ति गाहे बगाहे बौद्धिक विमर्श के दायरे में है। पर दोनों को लेकर हमारी जानकारी सीमित है। भारतीय समाज बहुस्तरीय समाज है। अब भी ठेकेदारी गैंगवार की खबरें मीडिया को चौंकाने वाली हैं। सामाजिक पारिवारिक प्रश्न गौण है। गली मोहल्ले की हत्याएं हिंसा के तथ्य इन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लगे रहो मुन्ना भाई, गांधीगिरी का मुद्दा छोड़ जाता है कि एक पुरुष नायक की नई छवि बना दी जाती है, जैसे फिल्म गांधी का नया पाठ बना रही है, सत्याग्रह को नया अर्थ दे रही है, जबकि वह छवि दादागिरी का ही महिमा मंडन कर रही होती है। आश्चर्य नहीं कि मुक्तिकामी नई स्त्री किसी मुन्ना भाई को नायक मान ले। इस तरह के मिथ हमें मूल सवाल से भटकाते हैं। अभी नए लड़कों लड़कियों को न स्वतंत्र रूप से पाठ्यक्रम चुनने की छूट है न जॉब चुनने की। जो स्थितियाँ उत्साहप्रद हैं वे बहुत सीमित हैं। थिएटर या फिल्म में काम करने से पहले अक्सर किसी गॉडफादर का चुनाव करना पड़ता है। यहाँ कई तरह की यंत्रणाएं, चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि की नई स्त्रियों को झेलनी पड़ती है। शोषण या उत्पीड़न के ये नए रूप हैं। तकनीकी संस्थाओं में युवा लड़कों लड़कियों की आत्महत्या भुला दी जाती है। यह त्रासद वृत्तांत है और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों का डरावना तथ्य है। कई बार छोटे कारणों से पूरा परिवार साफ कर दिया जाता है और इसके पीछे भी कोई प्रेम प्रसंग चर्चा में आ जाता है। जरूरी नहीं कि प्रसंग वास्तविक हो, पर समाज इन विषयों को चटपटी कहानी में बदल देता है। घटना हुई नहीं कि बॉलीवुड इस मुद्दे पर क्राइम स्टोरी जैसी फिल्म बनाने की घोषणा कर देता है। भौंरी देवी, फूलन देवी, क्या मसाला, स्टोरी भर है। इधर भद्र परिवारों के ऐसे प्रसंग भी फिल्म निर्माताओं की नज़र में हैं। जैसे दिल्ली की प्रमुख सड़कों से छात्रा का अपहरण, बलात्कार, हत्या। ये कुछ असुविधाजनक सवाल हैं जो पुरुष वर्चस्व बनाम स्त्री मुक्त के दायरे में पूछे जा सकते हैं। लड़की ने प्रेम किया, भागकर प्रेमी के साथ मंदिर में विवाह किया, परिवार ने स्वीकृत का भरोसा दिलाया और दोनों को मार दिया गया। ये तथ्य हैं, कहानियां नहीं हैं। पुरुष वर्चस्व ही तय करता है कि परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा का मानक क्या है। इधर कई कहानियां, रोमियो जूलियट और अंधेरा, रेखाचित्र में धोखे की भूमिका, स्त्री उत्पीड़न के बहाने से लिखी गई बहुलार्थी कहानियां हैं। समय है कि पुरुष वर्चस्व के दायरे के अंतर विरोधों की पड़ताल की जाए और स्त्री मुक्त की अंतर विरोधों को नजरअंदाज न किया जाए। खबरें जितना बताती हैं वह अपर्याप्त है। अज्ञात क्षेत्रों का अनुसंधान इस विमर्श को अर्थवान बना सकता है। B70 आवास विकास कॉलोनी, सूरज कुंड, गोरखपुर, 273015। लेख पृष्ठ 30। स्त्री की आधारभूत सम्मान का प्रश्न। सूर्यवाला, तुम्हारा पत्र मिलने के बाद से मैं लगातार जिरह में हूँ। प्रश्नों और प्रतिप्रश्नों का एक बड़ा हुजूम मुझे घेरे है। जवाबों से फिर-फिर सवाल निकलते हैं और डिस्टर्ब करते हैं। तरतीब लगानी मुश्किल है। अब जैसे यही कि स्त्री की जिस आर्थिक स्वतंत्रता की बात तुमने उठाई है, वह क्या सिर्फ दैनंदिन खर्चे पानी से जुड़ी जीवन यापन की बाहरी समस्याओं पर ही शुरू और खत्म हो जाती है, या कि उसका रास्ता स्त्री की आत्मनिर्भरता से होता हुआ सम्मान पूर्वक जीने के एक बहुप्रतीक्षित मुकाम तक जाता है? तुमने आर्थिक आज़ादी के साथ जिस स्वप्न का उल्लेख किया है, वह सचमुच जीवन का सच नहीं बन पाया। वह सपना था स्त्री मात्र के सम्मान पूर्वक जीने की चाहना का। मात्र धन की चाह स्त्री को कभी नहीं रही। धन तो परिवार का हुआ ही करता था। कुलवधुओं से लेकर रखैलों तक के नाम पर स्त्री धन भी नहीं था तो अपनी इच्छा से उसके उपयोग का अधिकार। जो दिया जाए, बुरा या अच्छा भी, उसी में संतुष्ट रहने की जानी समझी हिदायतें, अर्थात दूसरों की इच्छा अनुसार जीने की लाचारी स्त्री की आचार संहिता का परिहार अंग हुआ करती थी। आर्थिक स्वतंत्रता का स्वप्न इसी पराश्रिता वाली बेचारगी की मुक्ति से जुड़ा था। नवजागरण और औद्योगिक क्रांति की वजह से स्त्री के लिए अवसरों का छींका भी टूटा, लेकिन देखते देखते दधि माखन की जगह उसने उसके हाथ में सिर्फ पनीली छाछ की कटोरी भर रह गई। किस चाव और उछाह के साथ कूदी थी स्त्री जीवन के इस नए समर क्षेत्र में। एक सुबह से रात तक घर बाहर नाश्ता खाना, टिफिन, होमवर्क, बैंक, बाजार, टैक्स, अस्पताल, बर्तन कपड़ों से लेकर दफ्तर की फाइलों तक अपनी सारी बौद्धिक क्षमताओं और ऊर्जा के साथ सूरज चांद नापने की तमन्ना से दमकती फिरी थी वह। लेकिन बहुत जल्दी मोहभंगों के तार टूटने लगे। समीकरणों के जटिल होते जाने का सिलसिला शुरू हुआ। कहाँ तो सोचा था चिरागा हर एक घर के लिए, घर तो घर बाहर भी सम्मान मिलेगा, हाथों हाथ ली जाएगी। कहाँ घर बाहर दोनों के बीच लस्त पस्त व कहीं की न रही। उसे हैरानी हुई कि इसी धनार्जन के लिए तो पुरुष को इतना सम्मान मिलता था, इतनी आवभगत होती थी। लेकिन उन्हीं कामों में घर परिवार के डबल रोलों में खटने के बावजूद उसके श्रम की कीमत कौड़ियों के मोल भी नहीं, उल्टे लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। जिसे समाधान सोचकर स्वीकारा था, उसने नई और ज्यादा जटिल समस्याओं की खेप खड़ी कर दी। कुटुंब परिवार में रस्साकशी, स्त्री के कंधों पर पड़ते दोहरे चौहरे बोझों की थकान और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पति पत्नी संबंधों के बीच उपस्थित तल्खी खिन्नता और गलतफहमियों की चौड़ी होती खाई स्वयं की कमाई पर, स्त्री द्वारा जरा भी हक जतलाए जाने की पहल पर परिवार तथा समाज की चढ़ी हुई भृकुटियाँ, दूसरे शब्दों में सदियों से सिर्फ देते जाने की, आंसू से भीगे आंचल पर अपना सब कुछ रखकर परंपरा के बीच कुछ पाने की भी आकांक्षा अपराध बन गई। पृष्ठ 31। स्त्री के अंदर बढ़ती असहिष्णुता की शुरुआत शायद यहीं से होती है। तन और धन दोनों से परिवार में पहले की अपेक्षा दुगुना तिगुना योगदान देने पर भी न उसे समान अधिकार प्राप्त हुए न सम्मान ही। उसकी कर्मठता और सामर्थ्य की मापतौल में डंडी मारी जाने लगी तो बर्दाश्त की हदों का टूटना स्वाभाविक था। तो क्या इसके मूल में कहीं सदियों से स्त्री पर पूर्ण वर्चस्व और अधिकार का सुख भोगने वाले पुरुष की मनोवैज्ञानिक ग्रंथि कुंडली मारकर बैठी है? सही मायने में कुटुंब की संपत्ति का स्वामी होने के साथ साथ स्त्री रूपी खुल जा सिमसिम वाले खजाने का एक छत्र अधिकारी भी तो पुरुष ही था, और यह खजाना सभी नामधारी जमीन जायदादों से कहीं ज्यादा उपयोगी बल्कि अलादीनी चिराग था, जो हुक्म पाते पलक झपकते सेवा साहचर्य सुस्वाद भोजन से लेकर तन मन से जुड़ी सारी सुख सुविधाएं मुहैया करा देता था। स्त्री के आत्मबोध और चेतना के शंखनाद ने सदियों से पुरुष को मुक्त में मिलने वाले इन पर्स सहूलियतों पर सरेआम पानी फेर दिया। यह कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं था पुरुष जाति का। इतना ही नहीं, सब समान हो गए तो शासक शासन किस पर करेगा? शासितों के बिना शासक की सत्ता किसके भरोसे सुरक्षित रहेगी? सिंहासन खाली करो कि अप्रत्यक्ष गूंज ने अपनी तमाम प्रतिध्वनियों में पुरुष मन के अंदर उसके अनजाने असुरक्षा और भय की भावना न पैदा की हो, यह असंभव है। बात उपहासात्मक नहीं, समस्या के इतर पक्ष को समझने की दिशा में एक पहल है। किसी भी व्यक्ति के लिए पुरुष या हो या स्त्री अधिकार विहीन हो जाने की कल्पना दुस्सह और भय तथा असुरक्षा से ग्रस्त करने वाली होती है। पुरुष से ऊपर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिसने अधिकारों से वंचित किया उसे ही सम्मान देने की बात से ज्यादा विडंबनापूर्ण और क्या होगा? आश्रिता तो अब प्रतिस्पर्धी हो गई, तो साझा तो अपवादी स्थितियों में पुरुष से मिलने वाली दया और सहानुभूति की जगह प्रतिद्वंदिता का हो गया ना। प्रायः हर क्षेत्र में स्त्री पुरुष संबंधों से पति पत्नी संबंधों तक के बदलते समीकरणों का शायद सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यही है। स्त्री को पत्नी को अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता की मांग की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बाहर बाहर चेतना सामर्थ्य और चुनौतियों के स्वीकार से दमकती स्त्री का ग्राफ चाहे जितना उपलब्धियों से भरपूर तथा आकर्षक हो, अंदर उसकी संवेदना की अंजलि लगभग रीति है और संबंधों की भावहूम बंजर। यह सच है कि आज की जटिल जीवन शैली के तमाम सारे कारणों के बीच अगर स्त्री निराश्रित होती है तो उसका हश्र आधी सदी पहले की स्त्री जैसा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होता। वह आत्मविश्वास के साथ अपने बूते पर एक सम्मानित जीवन जी सकती है, लेकिन यह भी सच है कि भावनात्मक आश्वस्त के बिना मात्र अर्थ के सहारे चलता जीवन समस्या का अधूरा समाधान ही होगा। दिलचस्प और आश्वस्त करने वाला तथ्य यह है कि स्त्री पुरुष दोनों यह भावनात्मक सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन देने की अपेक्षा लेने में ज्यादा आग्रह रखते हैं। आत्म केंद्रियता के साथ जुड़ा स्व का ईगो इस लेन देन में ज्यादा ही अहम और गलत भूमिका भी निभाता है। आवश्यकता इस बात की है कि वस्तु स्थितियों के बीच संतुलन और सामंजस्य की संभावनाएं तलाशी जाएं। अतिवादी विद्रोह या अतिरेकी समझौता परस्थी दोनों से अलग समान भावभूमि पर सोचने की पहल हो। इन दिनों एक बात बार बार दोहराई जा रही है कि स्त्री भी अब अपनी सामर्थ्य और अधिकारों का कुछ कुछ वैसा ही दुरुपयोग करने लगी है जैसा अब तक पुरुष करता आया है। यूं तो इसके प्रतिरोध में बड़ी आसानी से वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी भर लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम वाली बात कही जा सकती है। लेकिन यह भी सच है कि पुरुष के साथ ऐसी समानता की नादानी स्वयं स्त्री की ही लक्ष्य सिद्धि में बाधक होगी। बहरहाल सर्वेक्षणों का दूसरा पक्ष यह भी कहता है कि नए पुरुषों का एक छोटा ही प्रतिशत सही यह समझने लगा है कि पहले वाली आशिता से सहचरी और सही मायने में साधारणी बनी या नई स्त्री अपनी सोच समझ और शेयरिंग में पुरुष के कहीं ज्यादा पास और साथ है। इस स्त्री को सभाव और सम्मान देकर वह घाटे का सौदा कदापि नहीं करेगा। B504 रूनवाल सेंटर, गोवंडी स्टेशन रोड, देवनार, मुंबई 40088।